हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 25 एंड 26। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा, श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्म्यतमिदं तथा ग्रहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविन्द दामो धर्माधवेति। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतां
ధరుణ బింబ ఫల ధరుష్ట పుళ్ళీంద్ర సుంద బింబ ఫల ధరుష్ట పుళ్ళీంద్ర సుందర ముఖ అరవింద నేత్ర కృష్ణాపరం కిమపి తత్వ అహం న జాని యం బ్రహ్మా వరుణీంద్ర రుద్ర మరుత స్తువంతి దేవి వేదీ సాంగపత్ క్రమోపనిషది గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తత్ గతేన మనసా పశ్యంతి యం యస్యాంతం న వేదు సురాసురగణా దేవాయ తస్మే నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీయద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణానికి జయ హో. ప్రథమ స్కంతే అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 25. जैसा कि हम जानते हैं कि विदुर धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे हैं कि अब बहुत हो गया, इस नाशवान शरीर से इतना प्रेम मत करो, इस राज्य में इतनी आसक्ति मत रखो राजन, अब सब कुछ तो छूट गया आपका, साथ में आपके शरीर ने भी आपका साथ देना छोड़ दिया है, आंखें पहले से नहीं थी, कान अब बहरे हो गए हैं, ज्ञान भी सही तरह से, बुद्धि भी कार्य नहीं कर रही है, दांत सारे हिल रहे हैं और आप फिर भी इतने आसक्त हैं इसके यहाँ राज्य के अंदर रह रहे हो इतनी आसक्ति के साथ, और वो भी उन लोगों के साथ जिनको मारने का, जिनको हानि पहुंचाने का आपने कितना प्रबल प्रयास किया, कभी उनको उनको अग्नि लगाकर मारने का कोशिश की, तो कभी विष देकर उनकी पत्नी को अपमानित किया, उनका धन छीना, राज्य छीना, उनकी जमीन छीनी, और फिर भी क्या जरूरत है यहाँ पर बैठकर उनके टुकड़ों पर पड़ने की. इसी बात को आगे आज श्लोक नंबर 25 में विदुर जी कहते हैं. తస్యాపి తవ దేహోయం కృపణస్య జీజీవిషో పరైత్యనిచ్చితో జీర్ణో జరయావాససి ఇవ. తస్యాపి తవ దేహోయం కృపణస్య జిజీవిషు పరైత్యనిచ్చతో జీర్ణో జరయావాససి ఇవ. తస్యాపి తవ దేహోయం కృపణస్య జిజీవిషు పరైత్యనిచ్చతో జీర్ణో జరయావాససీ ఇవ. తస్యాపి తవ దేహోయం, తస్యాపి మతలబ్ ఇస్కే బావజూద్ భలే ఆప్కో కితనా అప్పీ इसके बावजूद कि भले ही आपके आपका अपने शरीर के अंदर कितना ही मोह क्यों न हो, तस्यापि तव देहेयं कृपणस्य जिजीविषो, मतलब जिजीविषो का मतलब है जीवन की इच्छा करने वाले, भले ही आपको कितनी ही इच्छा क्यों न हो, जीने की इच्छा भले कितनी ही प्रबल क्यों न हो, भले ही आप कभी भी नहीं मरना चाहते हो, पर ऐसा थोड़े न होगा। परैत्यनिच्छ तो जीर्णो, परैत्य मतलब क्षीण हो जाएगा आपका जो ये शरीर है, अनिच्छता भले आप नहीं चाहते हो फिर भी आपका ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, गल सड़ जाएगा। क्यों? जरया वाससी इव, जिस प्रकार जो पुराना कपड़ा होता है ना, जरया मतलब बहुत ही पुराना हो जाता है, खस्ता हो जाता है, वाससी वस्त्र, वो उसको आप कितना ही संभाल के रखो, कितना ही उसकी केयर करो, लेकिन वो तो फटेगा ही ना। मतलब पुराना कपड़ा चाहे कितना भी संभाल कर रखा जाए वो फट जाता है, बैठने में, इधर उधर रखने में। तो वैसे ही अब आपका शरीर तो गया, अब आपका शरीर अधिक समय आपका साथ नहीं दे सकता, भले ही आप कितनी ही प्रबल इच्छा करो उसको संभाल कर रखने की, वो तो अब बस आपका साथ नहीं देगा, अब आप अधिक जी नहीं पाओगे। अनुवाद, मरने के लिए आपकी चाह ना होने पर भी तथा आत्म सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चित ही क्षीण हो जाएगा और पुराने वस्त्र की भांति सड़ गल जाएगा। यहाँ पर देहं कृपणस्य जिजीविषः, कृपणस क्या क्या, कृपण का मतलब होता है, श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से कृपण का मतलब बताएंगे, श्री प्रभुपाद की इच्छा हो। कृपणस्य जिजीविषः शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं, एक कृपण और दूसरी ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता। मतलब इसका मतलब क्या है कि यह भौतिक शरीर जो ये मनुष्य देह जो हमें मिली है वो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन साधारणतया लोग इस मनुष्य देह के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते, इससे वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, बस इस देह को ही चमकाने में, इसी को खिलाने में पिलाने, इस देह को बहुत पोषित करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इस देह की जो इंद्रियां हैं इसको संतुष्ट करने के लिए जीते हैं। जैसे आपको बहुत ही अच्छी अगर गाड़ी मिलती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही हाई फाई टाइप की आपके पास गाड़ी हो और आप अपने गाड़ी को एक बहुत ही खूबसूरत गैरेज बना कर दो, उसका बहुत अच्छा पेंट करवाओ, उसके जो लाइट्स वगैरह उसके अंदर बहुत सारी अच्छी लगवाओ, लेकिन कभी भी उस गाड़ी में बैठकर आप किधर जाओ नहीं, तो फिर फायदा नहीं हुआ ना। मतलब आप उस गाड़ी को तो संभाल रहे हो बट उसका वास्तविक लाभ नहीं ले रहे हो। उसी तरह मनुष्य देह जो है वो उसके द्वारा हम कृष्ण प्राप्त कर सकते हैं। एक जीव के लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता कि वो जीव अपने कृष्ण की प्राप्ति कर सकते, और वो सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य, ये मनुष्य देह स्पेशल बनाई गई है भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए। भगवान ने आपकी इस भौतिक शरीर का जो मनुष्य देह है ना, उसका डिजाइन किया है इस तरीके से कि आप उसके अंदर रहकर बहुत अच्छी तरीके से, सरलता से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। आपके हाथों को भगवान ने ऐसे बनाया है कि आप उनसे जप कर सकते हो, आप उनसे भगवान की विग्रह का श्रृंगार कर सकते हो, उनसे भगवान के लिए प्रसाद भोग बना सकते हो, आप अपने कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकते हो। ये मुख देखिए, भगवान ने कितना सुंदर जिह्वा दी है जिससे हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम भगवान के श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए दूसरे कितने पशु पक्षी हैं, वो ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं। है ना, नेत्रों से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जीवा से भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कर सकते हैं, नाम का जप कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये वास्तविक लाभ है इस मनुष्य देह का। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृपण वो व्यक्ति होता है जो कंजूस, इसका मतलब कोई अपने शरीर का मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी और उपाय से जवान बनना चाहता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कृपण के विषय में बताते हैं कि वो पूरी जिंदगी भोग करना चाहता है, बूढ़ा हो जाता है फिर भी चाहता है कि कोई ऐसी औषधियां हो जिससे मेरा शरीर इतना यौवन बना रहे कि मैं और भी इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है। तस्यापि तव देहो यम कृपणस्य जिजीविषु, कृपणस्य कि आप कितने कृपण हो, क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना ये न कि न प्रकार जीवित रहे, उसने कभी भी अपने मनुष्य देह का कोई लाभ नहीं लिया, कोई मूल्यांकन नहीं किया, मतलब कोई फायदा तो लिया नहीं है शरीर से, बस ये न के न प्रकार जीवित रहना चाहता, फिर भी मरना नहीं चाहता, क्या फायदा है इस जीवन का। तो विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। बूढ़े हो गए हो, दांत खत्म हो गए, बाल सफेद हो गए, अंधे बहरे हो गए हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या करो जीकर, तैयारी करो मरने की, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। जीव जिस संसार में जिस जीव को जितना समय जीना होता है, भले वो कितना भी अपनी सुरक्षा का बहुत ही प्रबल प्रबंध कर दे, लेकिन वो उस अवधि से एक क्षण भी अधिक नहीं जी सकता। तो फिर वास्तव में बुद्धिमानी क्या है कि जब आप स्वस्थ हो तभी से मृत्यु की तैयारी करो, प्री प्लान करना चाहिए कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए जीव की, किस तरह से मुझे मरना है, क्योंकि भगवान ने कहा है अंतकाले च मामेव, वो अंतकाल कभी भी हो सकता है। धृतराष्ट्र तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तो जीव को बूढ़ा होने का भी अवसर नहीं मिलता, कभी भी मृत्यु आ जाती है, तो हमें अवश्य उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो वह क्यों कर ऐसा अपमानजनक जीवन बिताना चाहता है। श्रेयकर तो यही है कि मृत्यु की परवाह न करके सत्य पथ ग्रहण किया जाए। शिवरूपात कितना सुंदर बता रहे हैं कि वो मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु के लिए किसी को परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अवश्यंभावी है, इसलिए मृत्यु की परवाह ना करके सत्य पथ ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना मुश्किल लगता है, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उसमें खाना छोड़ना होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते हैं, कांदा लहसुन नहीं खा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो बहुत हमारे लिए कठिन जीना कठिन हो जाएगा। तो वास्तविकता क्या है कि मर जाओ, मरना तो वैसे ही है, लेकिन सत्य पथ पे चलते चलते मरोगे तो फिर तुम्हारा मरना भी शेयरकर हो जाएगा, वरना ये खा पी के जानवरों की तरह जीते जीते मरोगे तो दूसरे जन्म में जानवर ही बनना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने पथ से नीचे नहीं गिरना है, मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की तरह कार्य करना है, और मनुष्य की तरह कार्य करते करते यदि मृत्यु भी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं कल तो मरना ही है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु की परवाह ना करके सत्य पथ ग्रहण करना चाहिए, यह मनुष्य जीवन भौतिक संसार के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। श्रील प्रभुपाद जी मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को बता रहे हैं कि यह मनुष्य जीवन क्यों है, ताकि भौतिक संसार के सारे दुखों को समाप्त किया जा सके। क्या दुख हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठराशयनम। ये दुख हैं, ये वास्तविक दुख हैं जिनको सॉल्व करने के लिए मनुष्य देह मिला है। आज मेरे पास पहनने के लिए नई ड्रेस नहीं है, आज मुझे खाने के लिए यहाँ पर्याप्त वस्तु नहीं मिली, या जिससे मैं चाहती हूँ उसका फोन नहीं आया, या फिर मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं। ये वास्तविक प्रॉब्लम्स नहीं है मनुष्य जीव की। वास्तविक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही यह मनुष्य देह मिला है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीवन को इस प्रकार नियमन बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। वांछित लक्ष्य है वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके भगवत प्रेम प्राप्त करना, कि हम वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है और उस स्वरूप में मैं किस तरह से भगवान की सेवा करूं, वो वास्तविक लक्ष्य है जिसके लिए यह मनुष्य देह मिला है और उसी के लिए उपयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो ही आप ब्राह्मण हो, अन्यथा आप कृपण हो। अपने इस इतने महत्वपूर्ण मनुष्य देह का कोई मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हो। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही फूंक चुके थे। गलत धारणा थी उसकी। जीना चाहता था, भोग करना चाहता, राज्य करना चाहता था और 80% अपनी आयु समाप्त कर चुका था। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए था। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब तो उसे सोचना चाहिए कि आधे से ज्यादा जीवन तो समाप्त हो गया है, अब अंतिम घड़ियों में भी मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ तो अभी तो सदुपयोग कर लूँ। अभी तक तो अपने जीवन का दुरुपयोग किया था, तो ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भाव सागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जीव का सौभाग्य तो तब उदय होता है जब विदुर जैसे किसी स्वरूप से व्यक्ति से भेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल का मनुष्य सदैव अपने इस जीवन को केवल इंद्र तृप्ति के लिए व्यतीत करना चाहता है और समझता यही है कि जितना ज्यादा इंद्रिय भोग प्राप्त कर लेता हूँ उतना ही ज्यादा मेरा जीवन सक्सेस है। लेकिन जब वास्तव में गुरु प्राप्त होते हैं, किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य इंद्रिय भोग तो है ही नहीं, वो तो स्वयं भोग्य है और भोक्ता केवल कृष्ण है। तो उनके उपदेश से भाव सागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त करके वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। आगे विदुर कहते हैं, तो इतना जब धृतराष्ट्र ने सुना तो पूछा कि विदुर, जब यह शरीर समाप्त होने ही वाला है तो अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब विदुर जी कहते हैं, बस आप निकलिए, अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। राजन निर्गतम शीघ्रम, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब एक क्षण भी आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं, गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविख्यात गतिर्जह्यात् सवैधीर उदाहृतः। गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविख्यात गतिर्जह्यात् सवैधीर उदाहृतः। गतः स्वार्थम इमम देह, गतः स्वार्थ मतलब ठीक से उपयोग किए बिना, जैसे धृतराष्ट्र ने अपने इस देह को, इमम देहम इस शरीर को पूरा जीवन तो ठीक से उपयोग किया नहीं, केवल महत्व अंधी महत्वाकांक्षा के अंदर ही अपना पूरा ये शरीर जीर्ण कर दिया, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे राज्य प्राप्त करना है, राज्य प्राप्त करना है, अपनी जवानी में यही सोचता रहा क्योंकि अंधा था, उसको राज्य मिला नहीं। पांडव महाराज चले गए, उसकी बदली में उनको थोड़े समय के लिए राज्य दिया था कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक राज्य संभालो। उसके मस्तक पे मुकुट क्या आ गया, उसको तो ऐसा लगा कि बस मेरी दुनिया ही बदल गई। अब उसको ऐसा लग रहा था धृतराष्ट्र महाराज को कि ये मुकुट मुझ खोना नहीं चाहता, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, अब मैं इसको सदैव रात को भी पहनने का दिल करता था, रात को सोने के टाइम पर भी उसको उतारने का दिल नहीं करता था। तो वास्तव में उन्होंने कभी भी अपने शरीर का सही उपयोग नहीं किया। सही उपयोग क्या है? विरक्तो मुक्त बंधना, कि अपने अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम भौतिक वस्तुओं का परित्याग करके कृष्ण को हृदय में करके घर से निकल जाएं, और उसको नरोत्तम कहते हैं। वो व्यक्ति नरोत्तम कहलाता है जो अपनी भौतिक आसक्ति को समाप्त करता है धीरे धीरे, और फिर ये समस्त आसक्ति को समाप्त करके घर से बाहर निकल जाता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर कहते हैं अविज्ञात गतिर जहयात सवै धीर उदाहृत। अविज्ञात गति, अविज्ञात मतलब अज्ञात गति, एक लक्ष्य जो वास्तविक लक्ष्य है जीवन का, इस शरीर को त्याग देना चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। स ऐसा व्यक्ति वह धीर उदारता, उसको धीर कहते हैं, मतलब जो बाद में जब उसे किसी का उपदेश मिलता है या फिर धीरे धीरे जब उसका ऐसे ऐसे लगता है ना, अभी जैसे धृतराष्ट्र महाराज का तो सारा समय खत्म हो गया, अब उसके पास तो समय ही नहीं है अभी इस समय, तो विदुर जी उसको कैसे हताश जीवन के विषय में बता रहे कि तुम्हारे पास तो केवल अपमानमय जीवन है, तुम्हारे अभी तो तुम्हारा जीने का मतलब सब टेस्ट तो वैसे ही खत्म हो गया, अंधे हो, बेरे हो, समझ में आता नहीं है कुछ, और यहाँ पर कुत्तों की तरह उनके टुकड़ों पे पले हो, ऐसा जीवन नहीं। जब बहुत ही सुंदर जीवन है, जब सब प्यार करने वाले हों और जब सब मतलब सब चाहने वाले हों, अभी तक ऐसा धृतराष्ट्र जैसी अभी तक स्थिति नहीं हो, तब अगर कोई अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर चला जाता है भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो उसको नरोत्तम कहते हैं। लेकिन जब वो अभी ऐसा हताश जीवन हो गया है इसका, उसमें यदि कोई उपदेश दे और वो अपने संबंधियों से अलग होकर भगवान में मन लगाए या कहीं शरीर त्यागे, तो उसे धीर कहते हैं, सवय धीर उदारतम। तो यहाँ पर विदुर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप नरोत्तम तो बन नहीं पाए, क्योंकि नरोत्तम बनने के लिए तो आपको बहुत पहले से ये शरीर, ये जो भौतिक आसक्ति है वो छोड़कर बहुत पहले भगवत प्राप्ति करने के लिए चला जाना चाहिए जब शरीर तुम्हारे साथ था, परंतु अब तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, तो कम से कम नरोत्तम नहीं बने तो धीर तो बनिए। मतलब अब अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखकर दूसरी भौतिक आसक्ति को त्याग कर ही अपने शरीर का त्याग कीजिए। अनुवाद, जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाता है और सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने भौतिक शरीर को तब त्यागता है जब वह व्यर्थ हो जाता है, तो वह धीर कहलाता है। मतलब वो जब उसका शरीर वैसे व्यर्थ हो गया, अभी जैसे कैसे हो गया ना धृतराष्ट्र का, वो अगर शरीर त्यागता है तो उसको धीर कहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम ठाकुर का गीत है। क्या गीत है? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्य विष पाया। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य शरीर पाकर मैंने आपकी पूजा की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विष पान किया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का शरीर भगवत भक्ति के अनुशीलन हेतु मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से पूर्ण तथा कष्टमय बन जाता है। आज के मनुष्य को ये बात समझ में ही नहीं आती कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। शास्त्र चीख चीख के कहता है कि इस मनुष्य देह, ये मनुष्य देह आपको मिला ही नहीं है भोग करने के लिए। वास्तव में भोग करने के लिए तो जानवर की योनि ज्यादा उचित है। अगर आपको खाने का भोग करना है ना, तो हाथी बनना चाहिए। हाथी बहुत खाता है, मनोटन। अभी मनुष्य क्या खाएगा? सुबह से लेकर रात तक मेहनत करेगा, फिर भी दो रोटी चाय खाएगा ना। दो रोटी खाता हूँ सब्जी के साथ, है ना, मनोटनो खा सकता है। अगर खाने की इच्छा पूरी करनी तो हाथी बनना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करनी है तो कुत्ता और सुअर बनना चाहिए। एक मनुष्य की एक जीवन में एक से ज्यादा दो पत्नियां होती हैं, चार पत्नियां होती हैं, कुत्ते की तो बहुत सारी होती हैं। तो फिर है ना, ये मनुष्य देह जो है ना, वो आहार निद्रा वही मैथुन के लिए मिला नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि मनुष्य शरीर भगवत भक्ति के अनुशीलन हेतु मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से पूर्ण तथा कष्ट में। अगर भगवत भक्ति नहीं है तो समझो आपने अपने जीवन को कष्टमय बना दिया। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन नष्ट कर दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना ही घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर त्यागे जिससे लोग यह ना जान सकें कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। कि जीते जी तो उसने भौतिक आसक्ति से अपना मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन जब मरने का टाइम आए ना, तो उसे चला जाना चाहिए भौतिक। जैसे पता चल जाए ना कि अभी मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर केवल वो भगवान के अंदर अपना हृदय लगा सके, क्योंकि अभी मेन जो डिसीजन लेना है ना यमराज जी को या ब्रह्मा जी को कि अब उसको कहाँ भेजूं, वो अंतिम समय। तो अंतिम समय जो होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। उसको उसका यदि सदुपयोग कर लिया जाए ना, तो समझो पूरे जन्म में जो नहीं किया वो सब फल एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो अंतिम अंत मति सो गति, शास्त्र ऐसे कहता है, अंत में आपकी जैसी मति होगी वैसी आपकी गति मिलेगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उपाय बता रहे हैं, जीवन यदि खत्म हो गया हो, उसके अंदर हमने कोई सत्कर्म नहीं किया हो, तो उसे यह सलाह दी जाती है कि उसे मित्रों संबंधियों को बताए बिना ही घर छोड़ देना चाहिए। मतलब अब उसको निकलना चाहिए और इस तरह परिवार, समाज, देश के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में त्याग करे शरीर को जिससे लोगों को ये पता ही नहीं चले कि उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई। धीर का अर्थ है जो पर्याप्त उत्तेजित होने पर भी विचलित ना हो। पर्याप्त उत्तेजित होने पर मतलब आसक्ति होती है, ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे तो आपकी अपने पुत्र में, अपने पौत्रों में आसक्ति नहीं रहेगी। लेकिन भले ही पर्याप्त उत्तेजित हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेहवश सुखमय ग्रस्त जीवन का त्याग नहीं कर पाता। ये बहुत कठिन है वास्तव में। ये प्रैक्टिकल श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी का दिल नहीं करता कि अपना इतना कंफर्ट ग्रस्त लाइफ हो जिसमें पत्नी इतनी हमारी केयर कर रही हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, तो किसी का दिल नहीं करता है कि परित्याग कर दे। परिवार के प्रति ऐसे बेजा स्नेह से आत्म साक्षात्कार रुक जाता है। मगर हमें अपने लक्ष्य को देखना है ना, कि ये यदि मैं इसी तरह से अपनी पत्नी, अपने घर, अपने बच्चों की आसक्ति में लगा रहा तो आत्मा साक्षात्कार तो नहीं कर पाऊंगा, और अगर यह पूरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई और मेरी चेतना संसार में रह गई, आसक्ति यदि पुत्र पत्नी या घर में रह गई और शरीर छूट गया, फिर तो बहुत बड़ा घाटा है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आत्म साक्षात करने के लिए संसार में यह मनुष्य देह मिला है, तो मरने से पहले भगवान में पूर्ण चित लगना चाहिए, तभी सदगति होगी। तो उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परिवार के प्रति ऐसे बेजा स्नेह से आत्म साक्षात्कार रुक जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को बुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। हमें धीरे धीरे भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से अपनी आसक्ति को समाप्त करना है, ताकि जब मृत्यु आए तो हमारा पूरा का पूरा चित्त भगवान में लग सके। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। हताश जीवन मतलब एंड जब हो जाए, वैसे ही जीवन अभी किसी काम का रहा नहीं हो, उस तब ये सोचा जाता है वैसे भी मरने वाला हूँ तो फिर आसक्ति छोड़ू। तो ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है। जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, महात्माओं का, तो संभव है कि हमारे हृदय में अंत समय में वैराग्य हो, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। और भगवत वास्तव में भक्ति करने का सरल उपाय क्या है? अगर भक्ति करना चाहते हैं तो श्री प्रभुपाद जी ने श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, अच्छी भक्ति कैसे कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलना है बोला अगर हमें अच्छा भक्त बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने कहा अगर आपको अच्छा शराबी बनना होगा तो क्या करोगे? शराबियों की संगत करोगे तो बहुत अच्छा शराबी बन जाओगे। उसी प्रकार अगर आप भक्त बनना चाहते हो तो आप भक्त की संगति करो, बस वो भक्त के साथ रहकर आप, अगर आपको भक्त बनना है कुछ मत करो, एक अच्छा भक्त ढूंढो और उसके साथ रहना शुरू कर दो, खुद ब खुद भक्त बन जाओगे। तो यहाँ बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एक शरणागति संभव है। जब हम हमारे हृदय में दिव्य सेवा भाव जागृत होगा, जब हमें ये पता चलेगा कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा काम भगवान की सेवा करना है, तो फिर भगवान के चरणों में एक शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनके ऐसे भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। वास्तव में धृतराष्ट्र महाराज बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनको अपने अंतिम समय में विदुर जैसी भाई का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो कि भगवान के शुद्ध महात्मा भक्त हैं। तो अगर ऐसा सानिध्य किसी को प्राप्त हो जाता है तो सौभाग्य है, अंत समय में हमारी आसक्ति छुड़ाने के लिए उनका सानिध्य काफी है। परंतु अगर उस समय ऐसा नहीं हुआ फिर तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमें सदैव भक्तों का संग करना चाहिए, और सदैव शुरू से ही ये कोशिश करनी चाहिए कि घर में, पत्नी में, पुत्र में, पति में इतनी आसक्ति ना हो, ताकि जब मृत्यु का समय आए तो हृदय में भगवान को बिठाकर हम भगवान की आसक्ति को निर्माण करके भगवत प्राप्ति कर सकें। यही वास्तव में मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आगे सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से धृतराष्ट्र के ग्रह त्याग का बताएंगे, बहुत ही सुंदर हमें बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा।